اختلاق میں خوش آمدید. آج کا موضوع گفتگو ہے جو سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد پیش کی نو عمری کی شادی کے خلاف. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے مارچ میں کچھ سفارشات مرتب کی تھی اور حکومت کو دی تھی, جن میں سے کچھ سفارشات میں ایک یہ سفارش بھی تھی. ہم نے 12 مارچ کو اس کے حوالے سے پروگرام بھی کیا تھا, کافی دھواں دار پروگرام تھا, اس پہ کافی بحث ہوئی اس معاملے پہ, جس میں ہماری کچھ خواتین مہمان بھی تھیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کلیرکس جو ہے وہ بھی تھے, اور وہ پروگرام جو ہے ہم نے باضابطہ 2 گھنٹے کے لیے کیا تھا اور اس میں کافی گرما گرم اس کے اوپر بحث ہوئی تھی. اس میں باقی بات کرنے سے پہلے اور آج کے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے, اکرم بلوچ صاحب جو کراچی میں ہمارے نمائندے ہیں, انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے کچھ ترتیب دیا ہے اس موضوع کے حوالے سے, ذرا وہ دیکھیے.
2013 اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا کم عمر بچوں کی شادی سے متعلق 2-1 جیسے سرکاری اور غیر سرکاری بلوں کو اسپیشل کمیٹی نے تفصیلی جائزے کے بعد ایک مشترکہ بل کی صورت میں اسمبلی میں پیش کیا. بل کے تحت شادی کے وقت بچی کی عمر 18 سال مقرر کی گئی. خلاف ورزی کرنے والے والدین اور دولہا کو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی.
خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جو سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی جس میں نو عمری کی شادی کے خلاف معاملہ ہے, اور اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ بھی متعین کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو اس کو 3 سال تک سزا ہو سکے گی. یہ تو ہے لیگل نارمیٹو, جیسے کہ کاروکاری کے حوالے سے بھی بات ہوئی, لیکن معاشرے کے بہت سارے حصے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ ان قوانین کا لحاظ نہیں کرتے, ان کا پاس نہیں کرتے, اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو قانون بنایا جائے یا جو ہم بات کریں اس کی باضابطہ تنفیذ بھی ہو, اور وہ پھر تنفیذ سے آگے چل کے اس حد تک پہنچے گا, اس معاملے تک پہنچے گا جہاں پہ پھر لوگوں کے اندر خود ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوگا اور قانون کے مزید نفاذ کی ضرورت نہیں رہے گی. کہ آپ کا جو لیگل یعنی جو آپ کا قانونی ہے اور جو نارمیٹو یعنی معاشرت میں ایک احساس پیدا ہونا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان سے گریز کیا جائے گا اور وہ چیزیں ہم نہیں کریں گے, یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر فرزانہ باری ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اکیڈیمک ہیں, پڑھاتی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں جینڈر اسٹڈیز خاص طور پہ. ان کے ساتھ امین شہیدی صاحب ہیں جن کا تعلق اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے ہے, ارم فاروقی لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ایم پی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی, اور شرمیلا فاروقی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی ہے وہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. شہیدی صاحب, یہ جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے اس کے اندر کچھ لگتا ہے کہ سب تو نہیں لیکن کچھ لگتا ہے کہ کچھ بیمار سوچ بھی ہے کچھ معاملات کے حوالے سے, آپ اس سے اتفاق کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے آپ نے ابتدا ہی ایک منفی بات سے شروع کی.
چلے مثبت کر لیتے ہیں.
میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے ہم کسی مثبت کر لیتے آغاز کریں. دیکھیں, سوچ پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, کہیں پر بھی مثبت
میری منفی سوچ پہ آپ نے چھوٹتے ساتھ پابندی لگا دی.
نہیں,
اسی طرح کاؤنسل کی منفی سوچ پہ بھی پابندی
نہیں لگا.
چلے ٹھیک,
میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں ہر طرح کی سوچ کے حامل لوگ ہو سکتے ہیں.
چلے ٹھیک ہے,
ہمیں اس کو خود جب دیکھنا ہے تو پازیٹو وے میں دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو بات آپ کے سامنے آئی ہے اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوں. میں اس اجلاس میں موجود نہیں تھا جس میں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا ہے, اس لیے نہ میرے سامنے وہ فیصلے ہیں اور نہ ان فیصلوں کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ پس منظر میرے سامنے ہے.
اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل جو ہے وہ اتفاق رائے سے سفارشات مرتب نہیں کرتی؟
میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا آپ غور.
نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, مذاق
کیا کہ میں اس وقت بیرون ملک تھا.
اچھا, آپ بیرون,
پاکستان میں نہیں تھا. ठीक, चूंकि पाकिस्तान में नहीं था इसलिए उस इजलास में भी शरीक नहीं रहा,
ठीक ठीक,
इसलिए मुझे उस फैसले के बैकग्राउंड का नहीं मालूम,
ठीक।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेयक जुम्बिश कलम ये कहें कि भाई इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जो लोग हैं वो बीमार जहन की अक्कासी करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे तो बेयक जुम्बिश लब मैंने कहा था, बेयक जुम्बिश कलम नहीं कहा था। अच्छा चले, बहरहाल
ठीक है। मैं समझता हूँ कि किसी भी माशरती मौजू पर जब हम बहस करें तो तअस्सुबात से और अपनी ख्वाहिशात से कतअ नजर माशरे की जरूरियात और माशरे में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको सामने रखते हुए उस पर बात करनी चाहिए, और जब हम उसको किसी दीनी पस मंजर में देखते हैं तो फिर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं देखना चाहिए बल्कि अल्लाह की और उसके रसूल की मर्जी
के मुताबिक। शहीद साहब देखें, अल्लाह,
मैं आपको उसूली बात बता रहा हूँ,
ठीक है।
अब इस पर आप शरा सवाल करें,
उसकी कोई शरा भी तो होती है ना?
बिल्कुल होती है, बिल्कुल।
तो शरा के ऊपर तो आपको भी पता है कि इख्तलाफात है,
ठीक है।
तो फिर ये जब हम कहते हैं कि अल्लाह और रसूल के जो बात है उसके मुताबिक करना है, तो उन्होंने हर मामले के ऊपर हमें डायरेक्टली तो आके कोई बात नहीं की ना, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से, रवायात हैं इसमें, कुरान है, सुन्नत है, बेशुमार चीजें हैं, उनकी आगे शरा है, जिसकी वजह से फिर फिकों का भी मामला है, उनमें भी इख्तलाफात का मामला है। बट फरजाना, ये जो जैसे अभी शहीद साहब कह रहे थे कि मुआशरे का जो है ना तौर अतवार भी देखना है आपने और दीन के मामलात को भी देखना है इंसान, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो इस वक्त फैसला आया सिंध असेंबली की तरफ से ये मस्बत है या मनफी है?
नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल आई थिंक बहुत अच्छी बात हुई कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इतना एक खौफ का माहौल ख्वातीन में और बच्चों के हवाले से कि उनके राइट्स की वायोलेशन के हवाले से, मैं समझती हूँ कि जो ये इनकी
ज्यादा होने वाली ख्वातीन में से है नहीं,
नहीं मेरा मतलब है कि वो एक ऐसा, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस इदारे को ही खत्म कर दिया जाए। हमने तो ये डिमांड की कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को खत्म कर देना चाहिए, ये पोलिटिकल अदारा है। नहीं वो मैं बात कर रही हूँ कि देखिए बैकग्राउंड
और मौजू की तरफ आते हुए हमें माशरे की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों पर बात करनी चाहिए अगर हम माशरे में कुछ देना चाहते हैं,
ठीक।
लेकिन अगर हम सिर्फ बात बराए बात करना चाहें तो फिर
थोड़ा सा इस मौजू को
खोले, मौजू को खोले, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कौन से सवाल बनते हैं। इसलिए आप ये देखें कि आपके माशरे में मुश्किलात क्या है, आपके माशरे में जो आपके रवाज हैं वो क्या हैं, आपके देहाती इलाकों में किस किस तरह के रवैये, किस किस तरह के कल्चर्स डेवलप हो चुके हैं, उनका तोड़ क्या है, उनको कैसे रोका जाए, इन चीजों पर जब आप बात करेंगे तो फिर उसकी रोशनी में बात करेंगे।
और क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? कम बैक टू यू फरजाना, लेकिन शहीदी साहब ने जो कि बात शुरू की, शहीद साहब इस बात से भी आप इत्तेफाक करते हैं कि हमारे बहुत सारे जो रिवाज हैं और बहुत सारी रवायात जो है इनका ताल्लुक इस इलाके की सकाफत के साथ है, लेकिन उसके ऊपर दीन का एक मुलम्मा चढ़ा दिया
गया। बिल्कुल ठीक है, आप 100% इत्तेफाक करते हैं,
ठीक है।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक दीन से नहीं है,
दीन से नहीं।
हमने उसको दीन की मुलम्माकारी करके उसका दीन का बना दिया है, दीन की रूह भी उससे मुंजजर और दूर।
बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये
बिल्कुल इस वक्त तो हम एक पर्टिकुलर इशू पे बात करें ना कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने सिफारिशात दी थी, ठीक है, और वो सिफारिशात जब सामने आई तो जाहिर है कि अगर माशरे की बीमार सोच जो है वो रियासती अदारे और इस तरह के अदारे से भी वही सोच हमारे सामने आएगी तो जाहिर है कि एक एहसास से अदम तहफ्फुज पैदा होगा और उस अदारे की जो क्रेडिबिलिटी है वो जाहिर है कि उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे कि उसमें जिस किस्म के लोग इस्लाम का नाम लेकर बच्चों के राइट्स वायलेट करने की बात कर रहे हैं। देखिए बैकग्राउंड आपसे बड़े एहतराम के साथ कुछ भी हो, लेकिन आपने ये देखना कि वो सिफारिश जो है क्या वो ह्यूमन राइट्स का जो पैरामीटर्स है उसको वायलेट कर रही है, उसके अंदर वो फिट इन होती है। तो ये मैं समझती हूं कि ये जो बच्चों के हवाले से, इवन औरतों के हवाले से जो आया था कि पहली बीवी से इजाजत की जरूरत नहीं, मैं ये समझती हूं कि ये उस बीमार जहनीत को जो पाकिस्तानी समाज में एक पिदर सरी जहनीत और सोच है उसकी जो इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी की सिफारिशात ने उसकी निशानदेही की थी।
शर्मिला साहब मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, मैं जरा दूसरे मेहमानों को भी शरीक गुफ्तगू करूं। शर्मिला, आप ये गुफ्तगू सुन रही हैं, सिंध असेंबली ने यह करारदाद पेश, अब इसके पीछे क्या सोच थी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी सिफारिशात पेश की, सिंध असेंबली जो है उन सिफारिशात को रद्द कर रही है, तो इसकी वजूहात क्या थी, आप लोगों के जहन में क्या बात थी?
जी शुक्रिया एजाज साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत करती चलूं कि आज सिंध असेंबली ने कानून साजी की है, करारदाद नहीं थी ये। ये जो सिंध चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट था, ये 20 अगस्त 2013 को एज अ प्राइवेट मेंबर मैंने सिंध असेंबली में जमा कराया था। ये 2013 20 अगस्त की बात है, और उसके बाद गवर्नमेंट उसके दो ढाई महीने बाद अपना एक बिल लेकर आई, और चूंकि दोनों बिलों की नौयत सिमिलर थी, इसलिए एक स्पेशल कमेटी बना दी गई थी कि दोनों बिल्स का जायजा लें और जिस बिल में जो अच्छी चीज है उन दोनों को क्लब करके एक यूनानिमस, एक मुत्तफिका तौर पे एक बिल जो है वो असेंबली के सामने।
ठीक, सो दोनों बिल रेकंसाइल हो गए।
इरम भी
दोनों बिल्स को
रेकंसाइल है। उसमें एक कमेटी थी, फाइनली उस कमेटी ने एक यूनानिमस डिसीशन लिया, एक कंसेंसस बिल आया। आज उस बिल को सिंध असेंबली में कंसिडर किया और एट वंस उसको कंसिडर करके उसको असेंबली ने पास किया। अब ये कानून है, दिस इज अ लॉ नाउ। 1929 का जो मैरिज रिस्ट्रेंट बिल था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल, वो दैट स्टैंड रिपील्ड, जिसके अंदर 16 साल की उम्र बच्चियों के लिए थी और अगर उसको वायलेट करते तो एक माह सजा थी और ₹1,000 जुर्माना था। अब इस कानून के तहत अगर 18 साल की कम उम्र की बच्ची की शादी कराई जाती है, जो करवाएगा, जो परफॉर्म करेगा, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो कोई हो, और जो उसके वालदैन है या गार्डियन है जो उसका करवाएंगे, दोनों के लिए सजा इज अप टू 3 इयर्स, नॉट लेस देन 2 इयर्स एंड अप टू 3 इयर्स, और जुर्माना तकरीबन ₹45,000 के करीब। अच्छा, अब इसके पीछे देखिए, इसे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उनकी जो भी आरा आई है वो इस साल मार्च के महीने के अंदर आई है, और वो क्यों आई हमें नहीं मालूम। कोई पॉइंट ऑफ लॉ असेंबली ने इनको रेफर नहीं किया, हालांकि अगर ऐसी कोई बात होती तो 2/5 ऑफ द असेंबली मेंबर्स अगर इनको रेफर करते कि जी आया ये कानून कुरान और सुन्ना के मुतसादम है या नहीं, तो ये आरा देते, और इनके पास 7 साल का टाइम है कि ये अपनी आरा दें या ना दें। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने शुरुआत में कहा कि कुछ जहनी ऐसी बीमारी है इनको, कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो मुसलसल खवातीन और बच्चियों के खिलाफ अपनी आरा दे रहे हैं, तो मैं समझती हूं कि इनकी जो भी अफादियत थी, जो भी पहले भी कुछ नहीं थी खास, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, क्योंकि पिछले 20 सालों में इन्होंने एक हसबा बिल इनको रेफर किया गया था खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से, वो उसके ऊपर इन्होंने अपनी आरा दी थी जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दी। तो दैट यू नो एज फार एज देयर परफॉर्मेंस और उनकी अफादियत का इनका ताल्लुक है, वो ये है, उनकी कोई अफादियत नहीं है। अच्छा, अब इशू ये है इस वक्त कि जब आप बात करते हैं कि अब ये इस्लाम को बीच में लाते हैं ना कि नहीं जी बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। मैरिज इज अ कंसेंट बिटवीन टू पार्टीज। एक 9 साल की बच्ची या एक 8 साल की है या 7 साल की बच्ची जिसकी आप शादी करते हैं, उसको क्या पता शादी क्या है, उसकी क्या कंसेंट होगी। 18 साल की उम्र में आपको वोट का अख्तियार होता है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब 18 साल की उम्र में एक बच्चा या बच्ची माइनर से मेजर हो जाता है, वो अपनी आरा फॉर्म कर सकता है, अपनी कंसेंट या नॉन कंसेंट दे सकता है। जब लड़कों के लिए 18 साल की उम्र है तो लड़कियों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा था, ये तो आपका आईन भी कहता है कि जेंडर के हवाले से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आज हमने 85 ईयर्स बाद, एजाज साहब, 85 ईयर्स बाद इस एनोमली को हमने करेक्ट किया है, और सिंध असेंबली को ये एजाज हासिल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग द नेशनल असेंबली, के पहली असेंबली है जिसने कानून साजी की, एंड टुडे देयर इज अ सिन चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट 2013।
एक्सेलेंट,
इट्स इनफोर्स फ्रॉम टुडे।
ओके, जिसने एक 1929 के चाइल्ड मैरिजेस एक्ट को भी रिपील कर दिया, उसमें सजाओं में भी इजाफा किया गया, और ये एक बहुत मस्बत कदम है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि एक आपका कानून है, यानी आपकी एक लीगल साइड है, और दूसरी आपकी एक नॉर्मेटिव साइड है कि जहां पे मुआशरत जो है, और मुआशरा जो है वो उस कानून को कबूल करता है, और वो एक कानून सिर्फ नफाज का मामला नहीं रह जाता, बल्कि वो एक सोच जो है वो मुआशरे में सरायत कर जाती है और मुआशरा उसको कबूल कर लेता है। उसके हवाले से भी बात करेंगे, और इरम फारूकी साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं, बट आफ्टर दिस ब्रेक। خوش آمدید. ہمارا موضوع گفتگو ہے سندھ اسمبلی نے جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2014 جو پاس کیا ہے، جس میں 1929 کا جو قانون تھا اس کو ریپیل کیا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور اس وقت وقفے میں جو گفتگو ہو رہی تھی ہماری امین شہیدی صاحب سے اور فرزانہ باری صاحبہ کی بھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم آن کیمرہ کر رہے تھے اس سے بھی زیادہ وہ دلچسپ گفتگو تھی. ارم فاروقی صاحبہ، یہ جو اب تک بحث ہوئی اس کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ اس کو ایک مثبت قدم کے طور پہ لے رہی ہیں؟
پہلے تو بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. بہت اچھی گفتگو ہے اور شرمیلا نے کافی اس کو سم اپ کیا ہے اور بہت اچھی طرح سے ہمیں بتایا. اس میں میں صرف ایک چیز کہوں گی کہ یہ 1929 کا جو ایکٹ تھا یا جو بھی تھا کہ 14 ایئرز کی جو تھی اس میں، لیکن ایک امینڈمنٹ بھی آیا تھا وہ تھا 1965 میں، جس میں 16 ایئرز کی عمر بولی گئی تھی. اب دیکھیے اس کے اتنے سال کے بعد ایک بل آتا ہے اور وہ ایسا بل آتا ہے کہ آئی تھنک اس سے سب پورے سندھ کی عوام کو بہت بہت فائدہ ہوگا. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب لوگ اس کو پڑھیں گے تو وہ یہ سب کے لیے ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے. اور بالکل وہی بات ہے کہ جب آئی ڈی کارڈ بنتا ہے آپ کی ڈرائیونگ لائسنس یا آپ کی کسی اور چیز کے لیے، تو پھر اس میں کیوں نہیں ایج کا ایک فیکٹر آتا ہے. تو جب یہ دونوں بلز کلب ہوئے اور ہم لوگ اس کا پارٹ بنے اور ممبرز بنے، تو آئی تھنک ہم لوگوں نے ایک ایک شک کو پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ کون سی بہتری ہے سندھ کے عوام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس چیز کو. جب ہم یہ میٹنگز کرتے تھے اور ہم بیٹھتے تھے تو ہم صرف ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی تھی کہ سندھ کے جو وہ بچے ہیں جن کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے، ان کے مفاد کے لیے ہم کیسا بل لے کر آئیں جو یہ پاس بھی ہو اور پوری کنسنسس کے ساتھ پاس ہو. اس کمیٹی میں سارے لوگ موجود تھے، اس کمیٹی میں ساری پارٹیز کے لوگ موجود تھے اور ہم نے یہ کافی کافی گھنٹوں کی محنت کے بعد یہ ایک بل پیش کیا ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر بھی آیا ہے جو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن یہ لوگ اس کو ضرور سمجھیں کہ یہ کنسنسس ہے پورے سندھ کی عوام کا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وومن رائٹس، بچوں کے رائٹس جو اتنے وائلیٹ ہوتے ہیں جن جن ایریاز میں یہ ہوتے ہیں، وہ اسپیشلی بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر عمل درآمد نہیں ہوا اس بل کے بعد تو یہ ایک ویسٹ نہیں جانا چاہیے. ہم نے اس پہ آلریڈی ورک کرنا شروع کر دیا ہے، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہم ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے کہ یہ بل پاس ہو جائے اور اس کے بعد یہ ایک بریکنگ نیوز یا اس کی زینت جائے، لیکن اس پہ عمل ہونا، اس کو اویئرنیس پھیلانا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اویئرنیس پھیلانا. وہ غریب عوام جہاں پر یہ واقعی ہوتا رہا ہے ادھر وہاں پر اس کی اویئرنیس پھیلانا بہت ضروری ہے، ان کو ان کے رائٹس بتانا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم ان کے رائٹس نہیں بتائیں گے، ان کو اویئر نہیں کریں گے، یہ چیز بار بار ہوگی، چھپ کے ہوگی اور جس طریقے سے ہوتی رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے. بچے جس طرح ان کو شادی کر دیے جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ان کی فوٹیجز تک آتی ہیں اور ہم صرف ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر یہ بل کی شکل یہ پاس ہو گیا ہے اور سب کے کنسنسس سے ہوا ہے تو ہم سب اس کا پارٹ ہیں، حصہ ہے. ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ سندھ اسمبلی پہلی اسمبلی ہے پورے پاکستان میں جس نے یہ بل پاس کروایا.
بالکل ٹھیک ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی بالکل یہی بات کر رہی تھی اور میں ان کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. شہیدی صاحب، یہ ایک تاثر ہے، ہو سکتا ہے مکمل طور پہ درست نہ ہو، لیکن خواتین جو ہیں وہ، ان کی سوچ جو ہے وہ زیادہ فارورڈ لکنگ ہے، یہ ایک تاثر ملتا ہے مقابلتاً ہمارے جو علماء ہیں ان کے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 400-500-600 سال سے جو ہماری شرع ہے، ہماری جو جورسپروڈنس ہے، اسلامک جورسپروڈنس ہے، وہ ساکت رہی ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ آگے ایک موومنٹ کی ضرورت ہے؟
دیکھیے، ہمیں، میرا خیال ہے سب سے پہلے تو اسلام کو اور قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا المیہ اس وقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے موضوع پہ جب بحث آتی ہے تو ایک پرچون فروش بھی جو دال دریا بیچتا ہے وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کی تشریح اپنے نگاہ سے کرے.
اچھا اشارہ آپ نے میری طرف کیا؟
نہیں نہیں.
اچھا چلے ٹھیک.
میں عموم معاشرے کی بات کر رہا ہوں.
سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. سیاست میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کینسر کے بیمار کو لے کر اس پرچون فروش کے پاس نہیں جاتے.
ٹھیک
ٹھیک ہے. آپ کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے کسی اینکر کے پاس نہیں جاتے. ٹھیک ہے. چونکہ ہر چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے. ایک بندہ جس نے 25 سال اپنی زندگی کے صرف کر دیے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے میں, اس کی رائے میں زیادہ بدل ہونا چاہیے یا اس کی جس نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے؟
اچھا میں آپ کی میں صرف ایک وضاحت چاہ رہا ہوں. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن ہم جس وقت کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں, کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس علم کا جو وہ حصہ ہے, اس کی جو نئی سوچ ہے, جو جدید سوچ ہے, اس کے اوپر پوری دسترس رکھتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے.
جو ہمارے علماء ہیں ان کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ ان کی سوچ 13 سال پیچھے.
آپ کو مجھے نہیں پتا, آپ کو میرے
ڈاکٹر تشخیص غلط کرتے ہیں.
مطلب میں
صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ایک ڈاکٹر غلط تشخیص کرتے ہیں.
شہید صاحب کو بات.
میں میڈیا میں بار بار ان مولویوں کے حوالے سے اور ملائیت کے حوالے سے میں سب سے بڑا مخالف رہا ہوں اور بولتا رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم دین کے کسی ماہر کو جس میں وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں اس کو بھی اسی طرح سے رگیت دیں اور پامال کریں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے. جو ہمیں سوٹ کرتا ہو اس کو ہم مان لیں, اور جو ہمیں سوٹ نہ کرتا ہو اس کو کہیں یہ ریجیکٹڈ ہے, یہ روش اور یہ طریقہ کار غلط ہے. لہذا اس کو ہمیں پہلے مان لینا چاہیے کہ بھائی اس کو ایک اصول کے طور پر ہم مان لیں. اس کے بعد آپ جب بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے, ہم کہتے ہیں بھائی اسلام میں, میں مکتب اہل البیت کے حوالے سے بات کروں گا اس وقت, کہ ہمارے ہاں اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب بھی تمام ان جدید مسائل پر ہمارے مجتہدین کے فتاوی موجود ہیں جو آپ کے اس وقت کے عصری علوم کے ماہرین بھی قبول کرتے ہیں کہ آج کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے شریعت کی شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے بہتر سولوشن اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انسانی معاشرے کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں دو معاشرے
سمجھتے ہیں مثال کے طور پر,
میں مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں. دو معاشرے ہیں, ایک اس وقت جو ہے یعنی ایک اسلامی حکومت کے حوالے سے ایران کا معاشرہ ہے, ایک آپ کا پاکستان کا معاشرہ ہے. وہاں پر دیکھیں کس طرح کے مسائل ہیں, یہاں پر دیکھیں کس طرح کے مسائل ہیں. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, ان کو بھی, آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, ایک دفعہ جائیں وہاں پر معاشرتی مسائل کا ذرا جائزہ لیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کی جب وہاں پر تشریح ہوتی ہے مجتہدین کرتے ہیں, فقہا کرتے ہیں, تو اس کو معاشرے میں جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی.
اچھا نہیں, لیکن
اس لیے معاشرے کی
ایران میں نہیں, شہید صاحب ایران کا معاشرہ دیکھیں نا, ایران کا معاشرہ جو ایران کی ملائیت ہے اس کے خلاف ہے. ہمارے سامنے اس کے ثبوت موجود ہیں. ایران وہ شاید واحد ملک ہے کہ جہاں پہ باضابطہ عورتوں کو سنسار کیا گیا ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ کس قسم کا اجتہاد ہے اور کس قسم کی جدت؟
یہ اجتہاد نہیں ہے, یہ آپ میرا خیال ہے تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہیں. قرآن کریم میں رجم کا حکم ہے. آپ نے چونکہ ایک نقطہ
ڈیوٹرانومی میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈیوٹرانومی میں ضرور رجم کا ذکر ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ قرآن میں کہیں رجم کا ذکر.
نہیں نہیں, اس طرح سے اگر ہم جائیں گے تو پھر تو ہمیں دین کے تمام اصولوں کا منکر ہو جانا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری بحث کا رخ کہیں اور چلا گیا.
چلے مجھے
آئیں اپنے موضوع کی طرف.
اچھا
آپ کے اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں.
میں
کچھ باتیں کی ہیں, ان کو مجھے تھوڑا سا فوکس کرنے دیں.
ٹھیک ہے.
پہلی بات تو یہ ہے جو میں
شہید صاحب مجھے وقفہ لینا ہے, وقفہ لینا ہے, وقفہ لے کر
جی صاحب میں کچھ کہنا چاہوں گی.
جی ارم, آفٹر دا بریک آئی کم بیک ٹو یو, بٹ آفٹر دس بریک. خوش آمدید. بات ہو رہی ہے چائلڈ ریسٹرینٹ میریجز ایکٹ کی, 2014 کی جو سندھ اسمبلی نے پاس کیا. لیکن اس دفعہ بھی وقفے کے دوران ہماری گفتگو جو تھی وہ زیادہ دلچسپ تھی بنسبت اس کے جو کہ ہم آن کیمرہ کر رہے ہیں. اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ میری ایک نشست آف کیمرہ ہونی جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا رجم کا حکم جو ہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں. لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے, جیسے ابھی ہماری آف کیمرہ بات ہو رہی تھی. اور اس میں تعلق پھر انہوں نے बात उठाई कि सुन्नत के हवाले से जो हमने सुना है उस वाकये का ताल्लुक एक यहूदी औरत के साथ है जिसमें रसूल पाक ने यह पूछा कि क्या शरीयत मूसवी में इसकी क्या सजा है और उसके मुताबिक सजा जो है वो क्योंकि ड्यूट्रोनोमी में ओल्ड टेस्टमेंट में यह सजा जो है वो है। अब वो एपोक्रिफल है या वो दुरुस्त है उसका हमें कोई पता नहीं है लेकिन इस किस्म की किसी मुसलमान औरत के लिए सजा जो है उसका कम अज कम इस्लामी तारीख में मुझे नहीं पता। अमीन शहीदी साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह की मुख्तलिफ अहादीस है लेकिन अहादीस का मामला यह है कि अहादीस के ऊपर मुख्तलिफ वाकियात है लेकिन उसमें फिर मसला यह है कि अहादीस की सेहत के मामले में भी मुख्तलिफ फिकों में इख्तलाफ राय पाया जाता है। खैर बहरहाल ये एक बहस काफी लंबी है। इरम फारूकी साहिबा
नजरिया दे दिया हुजूर आपने एक नजरिया दे दिया और उसके बाद अब आप लोगों को इस बात पर कायल कर चुके हैं कि हाँ भाई ऐसा ही है नहीं ये गलत
नहीं नहीं चले
मैं कहता हूँ आप सवाल उठाएं जवाब बराबर का लें
अच्छा
जवाब बराबर का लेंगे जवाब तो फिर इंसाफ है अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर
नहीं मैंने इसीलिए कहा कि आपके साथ एक ऑफ कैमरा जो है ना वो बहस होना बहुत जरूरी है
दे दिया कि भाई रजम का कोई हुक्म इस्लाम में नहीं है या यहूदियत से मुताल्लिक है
नहीं
भाई ऐसा नहीं है
कुरान नहीं कुरान में नहीं है
जब आपने
कुरान
तुम लोगों को सुना दिया कि भाई अहदीस से
शहीदी साहब अगर मैं अगर शहीदी साहब अगर मैं वो क्लिप वापस चलाऊं वो क्लिप अगर मैं वापस चलाऊं तो आपने पहले ये कहा है कि कुरान में है जबकि मैंने आपको चैलेंज किया मैंने कहा कि हाँ कुरान और सुन्नत के ऊपर आप आगे ना आप अब होता ही है शहीदी साहब के माजत के साथ मैं जब अगर गोल करने की कोशिश करता हूं अगर हो जाए तो आप गोल पोस्ट तब्दील कर देते हैं कहते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं,
नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं, तो,
नहीं, नहीं तो, ऐसी चले मैं एक बात
लेकिन मैं एक सेकंड जरा मैं इरम फारूकी साहब वो कुछ कहना चाह रही थी मैं
बोलना चाह रही हूं
अगर अपने मौजू पे रहते
ठीक है ठीक है लेट्स गो टू इरम फारूकी जी इरम आप कुछ कहना चाह रही थी एंड देन आई हैव टू क्विकली गो टू शर्मिला जी
जब मौलाना साहब ने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया तो मैंने उनको बहुत गौर से सुना उन्होंने ये कहा कि माशरे की बात करनी चाहिए माशरे में जो कल्चरल बैरियर्स हैं उनको तोड़ना चाहिए और मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी सुन के लेकिन अभी जब थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये सारी बातें की तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें थी जो हम अडॉप्ट नहीं करते जो जिस पे जो हमें एक्सेप्ट होती हैं जो हम अपने लिए सही समझते हैं वो तो अडॉप्ट कर लेते हैं
नहीं लेकिन वो तो एतराज उठा रहे हैं इस बात पे
बताई हैं जो चीजें बताई
नहीं इरम लेकिन वो तो इस पे वैसे ही
वो तो इस पे बड़े इंसान थे हम उनकी उनके उनके काबिल
नहीं नहीं बट इरम एक सेकंड
बातें होती हैं
एक सेकंड इन फेयरनेस टू है
मैरिज की बात आई तो ये बच्ची का सवाल है ये बच्ची कौन है सबसे पहले तो ये देखिए जब लोग उनसे शादी करते हैं वो ऐसे ऐसे आदमी शादी करके ले जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है उसमें वो गुर्बत सबसे बड़ा फैक्टर है वो इतने गरीब लोग हैं कि जब वो बच्ची पैदा होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बच्ची पैदा होते ही उनको दुख होता है अफसोस होता है उसके बाद वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जवान हो और उसकी फौरन के फौरन शादी कर दी जाए लेकिन वो ये नहीं देखता कि शादी के फौरन के बाद उसको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसके बाद लिटरली मैंने जब ये बिल पढ़ा था और हमने जब बात की थी तो मैंने ये बात कही थी कि इस पे जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा और देनी चाहिए लेकिन हाँ एक कंसेंसस डेवलप होता मैंने ये कहा था कि जब वो शादी हो जाती है और उसके बाद वो लड़की बच्ची से चली गई उसको तो नहीं पता कि बुढ़े आदमी के साथ शादी की जाएगी
ठीक है इरम लेट मी गो टू
रेप है तो उसकी सजा भी तो होगी उसको वो रेप भी कर रहा है छोटी बच्ची के साथ उसके ऊपर हमें उसके ऊपर भी देखना चाहिए
ठीक है
आप मौलवी साहब से बताइए कि छोटी बच्ची जिसको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रही है
ओके ठीक है फाइन लेट मी गो टू शर्मिला साहिबा यार जी शर्मिला ये आपने भी गुफ्तगू सुनी
देखिए एजाज मेरा ख्याल है कि जब एक मौलाना साहब बैठते हैं तो उनका एक कॉमन आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी बच्ची की शादी इसलिए जल्दी कर देनी चाहिए क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि जब बच्ची बाले हो जाए तो जनाब उसकी शादी कर दी जाए देखिए सिर्फ जिस्मानी बलूगत की बात नहीं है आप जहनी बलूगत की भी तो बात करें ना कि बच्ची को एहसास तो हो उसको पता तो हो कि शादी का बंधन क्या है उसके क्या फराइज हैं और इरम बिल्कुल सही कह रही है कि अक्सर ये जो छोटी कम उम्र की बच्चियों की शादियां होती हैं वो गुर्बत की वजह से होती हैं घर में बच्चियां ज्यादा होती हैं माँ बाप लाख डेढ़ लाख रुपए के एवज एक बूढ़े आदमी को या एक ज़ईफ आदमी को या एक बीमार आदमी को अपनी बच्ची की शादी क्या बेच देते हैं शादी तो क्या बेच देते हैं और ये एक हकीकत है कि जब कमेटी के अंदर हम बैठते थे तो मेरे ख्याल है इरम और मैं सबसे ज्यादा वोकल होते थे कि सजा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। जो मेरा ओरिजिनल बिल था उसमें सजा 5 साल थी और जुर्माना 7 लाख रुपए मैंने रखा था, लेकिन जब कमेटी की डिलिब्रेशन होती रही तो बहुत सारे लोगों का यह ख्याल था कि नहीं जी सजा कम होनी चाहिए, जुर्माना कम होना चाहिए। बहरहाल मैं और एरम मुझसे आज भी इस हद तक इत्तफाक नहीं करते कि जुर्माना 45,000 हो गया है और सजा जो है 2 साल की रह गई है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि कंसेंसस हो जाए, किस तरीके से बिल आ जाए असेंबली में, कानून बन जाए, तो इसलिए हमने उसके ऊपर ज्यादा एतराजात नहीं किए। लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखिए नेशनल असेंबली में जब ये अमेंडमेंट लाई गई तो ये पास नहीं हो सकी, लेकिन सिंध असेंबली में जहां अक्सर सुर दिया जाता है, लोग कहते हैं कि जी वडेरे बैठे हैं, जागीरदार बैठे हैं, ये माइंडसेट है, ये आप कैसे पास करेंगे। आज मैं उन तमाम मेल मेंबर्स और तमाम फीमेल मेंबर्स लेजिस्लेटर्स जो वहां बैठे थे उन सबको मुबारकबाद देती हूं, उन सबका शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि ये बिल यूनैनिमसली पास हुआ, शिक उठाया
एब्सोल्युटली
और सबने इसके ऊपर यूनैनिमसली उसको पास किया। देखिए अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन काम हमारा अब शुरू होता है,
एब्सोल्युटली
काम है इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी जाके अगर किसी को ये पता चलता है कि कहीं छोटी बच्ची की उम्र की शादी हो रही है, इरम भी जा सकती है, मैं भी जा सकती हूँ, फरजाना बारी भी जा सकती
है,
और जाके
अब मामला जो है वो
अदालत के अंदर
अब मामला जो है वो तनफीज का है। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि अमीन शहीदी साहब बहुत सारी बातों से इत्तफाक कर रहे हैं। बीच में उन्होंने जो कुछ बातें की, जब इरम फारूकी बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि माशरती मसाइल है, उन्होंने पहले भी ये बात की इन फेयरनेस टू हिम के हम मुख्तलिफ चीजों को सिलेक्टिवली उठा लेते हैं,
और यही है अब भी यही हो रही है
सिलेक्टिवली उठा लेते हैं। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यह मुलम्मा साजी जो होती है बहुत सारी मुआशरती रवायात, और सितम जरीफी यह है कि बहुत सारी उन रवायात को हम इस्लाम के तौर पर पेश कर रहे हैं जो कि बुनियादी तौर पर हिंदू मत से आ रही है।
देखिए ये इशू तो नहीं है ना इस वक्त एजाज, इशू तो ये है कि जो माशरती रवैये हैं, बच्चों की शादियां हमारे यहाँ होती हैं, ये वायलेशन है। आपकी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कहती है कि होनी चाहिए, तो क्या इशू है यहाँ पे? नहीं एक से देखिए एक से मुझे तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई आई एम सिटिंग हियर, यू नो आई एम नॉट एबल टू इवन यू नो कंप्लीट माय सेंटेंस।
आप बोलिए।
सबसे बड़ी बात है प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या, पूरे दुनिया के मजाहब में ये है कि एक पेट्रियाकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। तमाम दुनिया के मजाहब की तशरीह करने वाले ये जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने तबाही मचाई है और उन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया है माशरे के अंदर एक पिदर सरी जो जहनीत है उसको बढ़ावा देने के लिए। क्रिश्चियनिटी में भी औरतें जो थी वो पहले बिशप नहीं हो सकती थी, ये सारी चीजें थी भाई हमारे मजहब के अंदर। मतलब ये जो मसला क्या है कि इस वक्त एक भी औरत पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लाम की तशरीह जो है वो फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव से करती है, जेंडर परस्पेक्टिव से करती है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर रिफत हसन है, वो एक फेमिनिस्ट
नहीं,
पाकिस्तान की बात करूं तो डॉक्टर रिफत हसन को क्यों नहीं दावत दी जाती कि वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में आके बैठ जाए। मैं इनकी इस बात से इत्तफाक करती हूं कि मजहब की तशरीह करना कोई आम ताम लोगों का काम नहीं है, उसके लिए एक पढ़ा लिखा आलिम होना चाहिए। इन तमाम जो लोग काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में बैठे हुए हैं उनकी तो पहले डिग्रीज देखी जाए, कहां से पढ़ के आए हैं, क्या उनका इल्म है, और उनकी सिलेक्शन जो है
कहीं और चली गई। मैं कह रहा हूं असल मौजूद जिसकी जरूरत है
इस वक्त माशरे के अंदर,
देखें जो इस वक्त माशरा है जिसकी वजह से यह कानून साजी हुई है, आपने उस माशरे में तब्दीली के लिए क्या कोशिशें की? आप फौरन इस्लाम को क्यों निशाना बनाती हैं?
मैं तो कह रही हूँ कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
गुजारिश नहीं गलत है,
आप एक रस्म और रिवाज जो हमारे माशरे में बच्चों को वायलेट कर रहा है
तोड़ना चाहिए, इन तमाम रसूम को पांव तले रोंदना चाहिए, हमें जाना चाहिए।
तो आप कंडेम करें ना चाइल्ड मैरिज,
मैं आपको बता रहा हूँ ना,
आप चाइल्ड मैरिज को कंडेम करते हैं।
कब चाइल्ड मैरिज का कायल हूँ मैं, पहले कह रहा हूँ
आप इस्लामिक आइडियोलॉजी
से नहीं, वो तो कह रहे हैं
अगर आप डिसएग्री करते हैं
चाइल्ड मैरिज की, जब आप खुद लफ्ज से जाहिर है दो बच्चे, बच्चों की शादी की इजाजत या हुक्म शरीयत ने कहीं पर भी नहीं दी।
आप कंडेम करते
हैं। अब बात सुने मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि निकाह सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं है। मैं जब वक्फा था वहां पर मैं यह अर्ज
कर रहा हूं, देना तो आप कह देना
नहीं
वाजे तौर पे क्यों कहते हैं कि आप इसके खिलाफ हैं,
क्योंकि आप उससे सुइस्तफादा करती हैं। मसला यह है, मैं कह रहा हूं पहले पूरे मामले को समझें, जब पूरे मामले को समझेंगे तो उसके बाद आपको बात करते हुए भी आसानी होगी और मैं भी बेहतर तौर पर आपको समझा पाऊंगा। बात ये हो रही है, जब आपकी इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहती है कि शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, तो बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जहां पर जिस्मानी ताल्लुक से हटकर भी निकाह के जरिए से महरम बना दिया जाता है। महरम होने के लिए निकाह शर्त है, निकाह में कोई शर्त नहीं है कि बच्चे हो या बाले हो, लेकिन जब शादी की और इज्तमाही जिंदगी की बात आती है तो वहां पर शरीयत ये कहती है कि लड़की को भी बालिग होने के साथ साथ रशीदा होना चाहिए,
ठीक है, बालिग होने के साथ साथ रशीदा होना चाहिए,
और इसी तरह से मर्द को भी रशीद होना चाहिए, समझदार, ताकि दोनों मिलकर एक खानवादे को, खानदान को चला सके।
ओके,
जब इस्लाम ने वाजह तौर पर यह हुक्म दिया है तो फिर आप इस्लाम
को जाना क्यों? शहीदी साहब बात नहीं, शहीदी साहब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सब मेहमानों का, लेकिन इसमें मसला यह है कि जो फरजाना बारी साहिबा का, फारूकी साहिबा का और शर्मिला फारूकी साहब का जो एक नुक्ता नजर है, उसका एक मैं समझता हूं कि उलमा को उस नुक्ता नजर को संजीदगी से लेना चाहिए।
मैं और क्या करूं,
नहीं आप तो मैं
ताहिद कर रहा हूं,
बिल्कुल
आपकी ताहिद कर रहा हूं, इत्तेफाक कर, पंजाब के देहातों में जो कुछ हो रहा है वो खिलाफ इस्लाम है,
बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं ये समझता हूं, मैं मेरी रिकमेंडेशन ये है बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम कि अमीन शहीदी साहब को आप बुलाइए अपने डिपार्टमेंट में, वहां पे बैठ के उनके साथ बात हो, ताकि जैसे आप मसलन ज़र्ब की बात कर रही थी कि फातिमा बरनिसी ने उसके ऊपर 13 सफे लिख दिए कि अरबी जुबान में उसके जो मुश्तकात हैं उनमें क्या क्या उसके मानी हो सकते हैं, तो ये वो सारी चीजें, और मैं समझता हूं कि हम अगर एक गैर मुतशद्दाना तरीके से और महज़ब तरीके से अगर हम बैठ के बहस करें तो उससे इस मुआशरे को और इस रियासत को फायदा होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।